सौ में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे? जब 100 में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे तो कौन लेंगे?
बस 16,000
जो दुनिया की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं और उन चुनी हुई आत्माओं में भी जिनका चुनाव हुआ है, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, हर धर्म में 108 की माला या 100 की माला घुमाई जाती है, सब उनकी मान्यता करते हैं। और
16,000 कैसे परिजन में कैसे आएंगे? 16,000 आत्माएं कैसे परिजन में?
16,000 आत्माओं में
अलग अलग धर्म के होना।
16,000 आत्माओं के बारे में बोला है कि 16,000 में ऐसे भी हैं जो लास्ट जन्म में जाकर के राजा ही वो ऊंच पद पाते हैं, नाम मात्र का प्रिंस प्रिंस जो बन करके रह जाते हैं, राजा ही तो नहीं पाते। और इससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं, उनसे तो अच्छा साहूकार बनना, साहूकारों के घर में ढेर सारे दास दासी होते हैं, तो साहूकार बनना अच्छा या दास दासी बनते रहना अच्छा? 108 के लिए तो नहीं बोला, 108 के लिए बोला, 100 के लिए बोला कि 100 की 108 की माला में आने से अच्छा है साहूकार बनते रहना है? साहूकार बनना फिर भी अच्छा है, दास दासी अक्षर ही खराब है।
साहूकार प्रजा कभी राजा बनते?
कभी कभी बनते हैं, जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। कम पुरुषार्थ करेंगे तो 1-2 जन्म के राजा बनेंगे, राजा तो बनेंगे, प्रिंस प्रिंस बन करके तो नहीं रह जाएंगे। और
बाबा बिंदु की अवस्था और सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति,
हाँ जी,
और बिंदु की अवस्था, इसमें अंतर क्या है?
सुषुप्ति स्वप्न और साकार, लौकिक दुनिया में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। साकारी अवस्था में देह की याद रहती है, देह के संबंधियों की याद रहती है, देह की दुनिया याद आती है, और स्वप्न अवस्था में भी देह की याद आती है, देह की दुनिया याद आती है, लेकिन प्रैक्टिकल में याद नहीं होती, स्वप्न मात्र है। और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, वो लौकिक दुनिया की बात हुई, कुछ याद नहीं रहता, उठेंगे आंख खुलेगी, अगर रात्रि है तो घड़ी देखना पड़ेगा, ये नहीं पता चलेगा कि हम कितनी देर सोए, कुछ याद नहीं रहता। और अलौकिक दुनिया में साकारी, आकारी और निराकारी, ये 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन अंतर क्या है? साकारी अवस्था होती है तो देह और देह के संबंधी याद आते हैं, लेकिन बीच बीच में बाप और बाप का ज्ञान भी याद आता है। और आकारी स्टेज में साकारी दुनिया याद नहीं आती, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है, सेवा की प्लानिंग चलती है और नई दुनिया याद रहती है। नई दुनिया के नजारे बुद्धि में आते हैं और जो निराकारी अवस्था है उसके लिए बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। तो ऐसा ब्राह्मणों का संगठन होगा जहां बाप और हम बच्चे होंगे, देह की स्मृति नहीं होगी लेकिन आत्मा की स्मृति जरूर होगी। और बाप की स्मृति भी हो सकती है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज वाला, ये याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। तो सुषुप्ति अवस्था दुनिया की अवस्था और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में निराकारी स्टेज, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो सुषुप्ति अवस्था है नील स्टेज, ये ब्राह्मणों की निराकारी स्टेज नील स्टेज नहीं है, ये बीज रूप स्टेज है।
ज्योति अवस्था दुर्या अवस्था क्या होता है?
तुरिया अवस्था में रहने वाला सिर्फ शिव ज्योति बिंदु है, उसे सदा शिव कहा जाता है। आत्माएं उस तुरिया अवस्था में नहीं रह सकती सदा काल के लिए, वो तुरिया पाठधारी है, वो सदाकाल के लिए अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, असोचता है। हम आत्मा है सदाकाल के लिए असोचता अभोक्ता अकर्ता नहीं बन सकते। और यहाँ संगम युग में सदा काल के लिए कर्म अकर्म बनते हैं क्या? सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं उस वो यहाँ की स्थिति के आधार पर। यहाँ जब बाप की याद रहती है, निराकारी स्टेज रहती है, मनन चिंतन मन की स्टेज रहती है तो अच्छी शूटिंग होती है सतयुग त्रेता की, और जब यहाँ खराब अवस्था होती है तो कहाँ की शूटिंग होती है? द्वापर कलयुग की शूटिंग हो जाती है। यहाँ जब हम दूसरों से प्रभावित होते रहते तो प्रजा बनने की शूटिंग होती रहेगी, और यहाँ जब एक बाप से ही प्रभावित रहते हैं और किसी की बात मानने की इच्छा नहीं होती तो हम सतयुग त्रेता की शूटिंग करते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। मनमत या मनुष्य मत मिक्स करके चलते हैं तब 63 जन्मों की प्रारब्ध बनती है।
शिव को इस दुनिया पे आकर के रचना हस्ती है, शिव को इस दुनिया पे आकर के रचना हस्ती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ रचना विष्णु होता है या जगदम्बा होता है या लक्ष्मी होता है?
शिव बाबा आकर के जो रचना रचते हैं उस रचना में श्रेष्ठ रचना वो कही जाएगी जो ऐसा पुरुषार्थ करने वाली है कुछ समय तक जो लगातार चरती कला का पुरुषार्थ हो, उतरती का कला का पुरुषार्थ न हो। तो जगदम्बा, लक्ष्मी या सतयुगी कृष्ण, इनमें कौन सा ऐसा पार्टधारी है जो लगातार चलती कला का पुरुषार्थी हो? एक बार चलती कला हो जाएगी तो उतरती कला नहीं होगी जब तक इस दुनिया का विनाश न हो जाए। कौन सा पाठधारी है वो? जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। क्या वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं है? सारा जगत माना आसुर भी है। दुनिया में आसुरों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? तो जगदम्बा की गोद में 500 करोड़ पलने के हकदार और लक्ष्मी की गोद में देव आत्माएं ही है, पालना लेने की अधिकारी बनती है। तो ज्यादा कौन सी माता को संग कुसंग का लगेगा? जगदम्बा को ज्यादा कुसंग लगता है, इसलिए जगदम्बा के लिए बोला है मुरली में कि जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। और लक्ष्मी महागौरी का पार्ट बजाती है। श्रेष्ठ संग रहेगा तो श्रेष्ठ पार्ट। बाप ने जो लक्ष्य दिया है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य ही श्रेष्ठ है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, नर से सतयुग का कृष्ण बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। सतयुग का पहले प्रिंस बनेगा पुरुषार्थ करने के बाद में नारायण बनेगा। तो ये लक्ष्य बाप का दिया हुआ नहीं है। और
समय बेकार हो गया और ध्यान और याद में अंतर क्या है?
दीदार माने देखना, दीदा दीदा कहते हैं आंख को, आंख की पुतली को। दीदार माने आंख से जो देखा जाए। कोई कोई साक्षात्कार में जाने वाले खुली आंखों से साक्षात्कार भी करते हैं, उसको दीदार। इन आंखों से देख। और ध्यान तो मन की चीज है, आंखें बंद होती हैं, साक्षात्कार करते हैं।
मन और हृदय का अंतर।
मन और
हृदय।
दिल और दिमाग दो चीजें कही जाती है, बुद्धि कहो और दिल कहो, दिल कहो या मन कहो, बात एक ही कहते हमारा दिल आ गया इस व्यक्ति के ऊपर या इस वस्तु के ऊपर, ये व्यक्ति या ये वस्तु हमें हासिल जरूर करनी, तो ये दिल की बात हुई, मन की बात नहीं हुई, मन की बात हुई, दिल की बात हुई, बुद्धि की बात नहीं हुई। बुद्धि कारण और कार्य का विश्लेषण करने वाली होती है, फैसला करने वाली होती है, तो बुद्धि ऊंची चीज है, और मन कहो या दिल कहो वह नीची चीज है। बुद्धि का परिवर्तन पहले होता है या मन का परिवर्तन पहले होता है?
मन का परिवर्तन
मन बुद्धि और संस्कार आत्मा के तीन कार्य करता है, शिव परमात्मा के भी तीन कार्य करता है, ब्रह्मा रूपी मन विश्व रूपी संस्कार और शंकर रूपी तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र तीसरा नेत्र। बार दिखाए गए हैं नीचे मन, उसके ऊपर संस्कार और संस्कार के ऊपर भी बुद्धि। संस्कार कब परिवर्तन होंगे? जब बुद्धि पक्का फैसला कर ले, हिलने डुलने वाला नहीं, तो संस्कार परिवर्तन होते हैं। बुद्धि और संस्कार के परिवर्तन होने से मन भी परिवर्तित हो जाता है।
तो शरीरधारी को दिल
एक मिनट
शरीरधारी
तो बुद्धि और मन और बीच में संस्कार शक्ति, कौन किसको कंट्रोल करता है? बुद्धि मन को भी कंट्रोल करती है, दिल के ऊपर नियंत्रण रखना होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ उछाले मारता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको मिला हुआ है वो उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। तो दिल है नीचे की ओर और बुद्धि है ऊपर की ओर।